سورۃ الانعام آیت نمبر 95، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے چلے جا رہے ہو؟ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا فرمایا کہ بے شک اللہ فالقو پھاڑنے والا ہے. سورۃ فلق آپ پڑھ چکی ہیں 30ویں پارے میں، سورۃ فلق، فا لام قاف اس کا روٹ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا، اور یہ لفظ جو ہے یہ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے جو ہے وہ زمین پھاڑ کر دانا جو ہے وہ نکل آتا ہے، اسی طرح انڈے کو پھاڑ کر جو ہے وہ مرغی کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ یہ لفظ پھاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے گٹلی کے پھٹنے سے کونپل جو ہے وہ نکلتی ہے، تو معنی کیا ہے؟ پھاڑنا. اور یہاں پہ فرمایا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ پھاڑنے والا ہے، کس کو پھاڑنے والا ہے؟ الحب، دانے کو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور قادر مطلق ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ ہر قسم کے غلوں کے دانوں یا بیج کو اور ہر قسم کے پھلوں کی گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. غلے کے بیج یا پھل کی گٹھلی کو جب زمین میں دبا دیا جاتا ہے، پھر جب اس زمین کو پانی دیا جاتا ہے، تو یہ بیج گٹھلی جو ہے یا بیج یا گٹھلی پھٹ کر دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، اس سے دو شاخیں نکلتی ہیں. ایک شاخ تو زمین کے اندر جڑ کی صورت میں نیچے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری شاخ کونپل بن کر زمین کو پھاڑ کر اس سے باہر نکل آتی ہے، پھر اس سے برگ بار پھل پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بیج ہے، زمین بھی ایک، پانی بھی ایک، اور مگر ایک زمین سے باہر نکلنے والے شاخ کے اثرات زمین کے اندر والی شاخ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. باہر نکلنے والی شاخ میں کیا آتا ہے؟ پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، اور جو اندر شاخ ہوتی ہے وہ جڑ کی صورت میں زمین کے اندر جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور یہاں پر بھی یہی کہا، ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پھاڑنے کے لیے قرآن میں 9 لفظ آئے ہیں، اور جو فلق ہے پھاڑنا یعنی پھٹنا اور الگ ہونا، اس کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں، اور اس کا جو ہے یہ 7واں 8واں درجہ ہے کہ پھٹنا اور پھر الگ ہونا. تو اب یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر جو ہے وہ صبح کی روشنی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اگلی آیت میں پڑھیں گی کہ فالق الاصباح، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا، فالق الحب والنوى. اور نوا کا لفظ جو ہے نون و یا اس کا روٹ ہے، اس کی جمع ہے نواتن، اور یہ گٹلی کو کہتے ہیں. आम की गुठली हो सकती है, खजूर की गुठली हो सकती है, जो भी गुठली है उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो असल में हब और नवा का जिक्र करके, जैसे दाना और गुठली, ये छोटी छोटी अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, और इनको फाड़ कर फिर अल्लाह इनके अंदर अंकुए निकालता है, फिर इनसे पौधे और दरख्त पैदा होते हैं। तो एक बीज और एक गुठली के अंदर अल्लाह इतनी सलाहियत दे देता है कि उसके जरिए से बाग के बाग जो है, चमन के चमन जो है वो लहलहाते और हरे भरे जो है वो हर तरफ नजर आते हैं। तो आम की बेजान गुठली में, गेहूं के बेजान दाने में जो है वो जान किसने पैदा की कि हरा भरा दरख्त और लहलहाता हुआ पौधा जो है वो पैदा हो गया। तो ये जो है कौन करता है, ये अल्लाह ही करता है। चमन के चहचहे हो या सकूते कोहो सहरा हो, चमन के चहचहे हो या सकूते कोहो सहरा हो, मसलसल जिक्र जारी है फिजा में सुबह शाम उसका, जिसे हम ढूंढने निकले हैं कोहो दश्तो सहरा में, सबा हर सू लिए फिरती है गुलशन में पयाम उसका, निहा खानों में दिल के और आलम की जबानों पर, जहां देखो जिधर देखो वहीं मौजूद नाम उसका। तो ये है अल्लाह की कुदरत की निशानियां कि फिर गुलिस्ता गुलिस्ता बहार आ गई, फिर गुलिस्ता गुलिस्ता बहार आ गई और चमन का चमन मुस्कुराने लगा। तो आप भी जो है वो अपने जो बागीचे हैं और आपके जो गुलाब के फूल हैं, आपने जो सब्जियां लगाई हुई हैं, आपका जो चमन है, आप जरा उसका जो है वो मुशाहिदा करें, आप देखें कि दाने और गुठली को फाड़ने वाला कौन है। इन अल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती, वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है, वह मुखरिजुल मय्यिती मिनल हय्य, और वही मुर्दा को जिंदा से खारिज करता है। तो ये जिंदा को मुर्दा से निकालने का मतलब बेजान मादा से जिंदा मखलूकात को पैदा करना, और मुर्दा को जिंदा से खारिज करने का मतलब जानदार जिस्म में से बेजान मादा पैदा करना। मसलन अंडे से मुर्गी, मुर्गी से फिर अंडा, नुतफा बेजान है उसमें से इंसान का पैदा होना, और इंसान से फिर नुतफा, फिर इसी तरह ये जो बीज है गंदम का, गेहूं का, या इसका बाजरे का, मकई का, या गुठली है खजूर की, आम की, मुख्तलिफ गुठलियां, ये सब बे जान होती हैं। तो इनसे फिर हरा भरा दरख्त और लहलहाता हुआ पौधा कौन पैदा करता है, ये अल्लाह ही है जो कि पैदा करता है। तो यहाँ पर दरअसल अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी कारीगरी की दलील दी है, और साथ ही इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जो अल्लाह बेजान चीज से जो है वो जान पैदा करता है, जिंदगी पैदा करता है, और फिर यही सरसब्ज दरख्त, लहलहाते हुए पौधे, ये जर्द हो जाते हैं, ये खुश्क हो जाते हैं, इन पे मुर्दनी तारी हो जाती है, यहां तक कि फिर एक वक्त आएगा कि इंसान भी जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर वो मरेगा। तो ये मौत और जिंदगी, ये उरूज और जवाल, ये कहानी दोहराई जाती रहेगी यहां तक कि फिर हिसाब किताब का वक्त जो है वो आएगा, और लोग कयामत का इनकार करते हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून, जब ये सारे काम करने वाला अल्लाह है तो फिर तुम किधर बहके चले जाते हो, फिर तुम कैसे जो है वो धोखे में आ जाते हो। तो इफ्क, इफ्क जो है इसका रूट है तूफकून का, हमजा फा काफ, और इसके मानी है किसी चीज को उल्टा कर देना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछ रहे हैं कि फिर तुम कैसे जो है वो धोखे में आते हो, उल्टे फिरते हो, से मुराद ये है कि तौहीद परस्त बनने की बजाय तुम शिर्क करने लगते हो। फालिकुल इसबाह, पर्दाए रात को, पर्दाए शब को चाक करके वही सुबह निकालता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है वो फालिकुल फालिकुल इसबाह, यहाँ पे अल्लाह की ये कुदरत की एक और निशानी जो है उसकी तरफ इशारा किया गया है। और इसके मानी क्या है कि आप देखें कि रात की चादर हर तरफ बिखरी हुई होती है, और इस बाह के मानी है सुबह का वक्त। तो रात की चादर जो है उसको फाड़ कर सुबह निकालने वाला कौन है? फालिकुल इसबाह ये अल्लाह है। वजअल लैला सकना और उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया। अब आप देखिए कि रात जो है ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है कि इंसान जब थक जाता है, हर जानदार चिरिंद परिंद हैवानात सब थक जाते हैं, तो उनके सुकून के लिए अल्लाह ताला ने रात बनाई। और रात जो है वो तारीख है ताकि सब आराम कर सके। तो दिन की रोशनियों को रात की तारीकियों में बदलने वाला कौन है? वो अल्लाह है। وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا कि जिसने रात को सुकून का वक्त बनाया, अंधेरा खामोशी सुकून, ताकि लोग जो हैं वो रात की तारीकी में जो है वो आराम कर सके। फिर इसके बाद फरमाया وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا उसी ने चांद और सूरज के तुलू और गुरूब का हिसाब मुकर्रर किया है। अब आप देखिए कि यहां पर सूरज और चांद जो हैं वो एक हिसाब से हैं, उनके तुलू और गुरूब का जो है वो अल्लाह ताला ने एक हिसाब मुकर्रर किया है। इसके मानी ये हैं कि दोनों जो हैं वो एक हिसाब से चल रहे हैं, दोनों की अपने अपने ऑर्बिट्स हैं, अपनी अपनी मंजिलें हैं, गर्मी और सर्दी में दोनों में वो चलते रहते हैं, और सूरज और चांद जो है अपनी जगह से फिरते नहीं है। अब आप देखिए कि जहां तक बात है सूरज की जसामत की, तो जमीन से 12 लाख गुना ज्यादा है और जमीन चांद से चौगुना ज्यादा बड़ी है, और ये सब मुसलसल हरकत में है। चांद जमीन से तकरीबन 2.5 लाख मील दूर रहकर जमीन के गिर चक्कर लगा रहा है, और जमीन सूरज से तकरीबन 9.5 करोड़ मील के फासले पर रहते हुए सूरज के गिर्द जो है वो घूम रही है और अपने अपने ऑर्बिट पर। अब आप देखें कि गाड़ियां जब रोड पर चलती हैं तो अपनी अपनी लेन में चलती हैं, लेकिन वो अपनी लेन छोड़कर जब दूसरे की लेन में गाड़ी आती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सूरज और चांद के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो जो उनके लिए रास्ता मुकर्रर कर दिया है, जो उनके लिए मदार मुकर्रर कर दिए हैं, ऑर्बिट्स मुकर्रर कर दिए हैं, उससे हटते नहीं है, बड़े मुनासिब फासले पर हैं। और अगर जो है ये एक दूसरे के जरा से करीब आ जाएं या एक दूसरे से जरा से भी दूर हो जाएं, तो फिर कायनात जो है इसका निजाम बिगड़ जाए और आपस में टकराव पैदा हो जाए। और जब ये जो है वो अपनी जगह को छोड़ेंगे तो वो दिन होगा कयामत का। ये जो इनका जो है वो एक खास रफ्तार से, एक मुनासिब रफ्तार से, बगैर किसी तगैयुर के अपनी अपनी जगह पर चलते जाना है, तो ये जो तवाजुन अल्लाह ताला ने मुकरर किया है कि बकायदगी के साथ ये सूरज चांद सितारे ये सब चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये करने वाला कौन है? इतना बड़ा निजाम इतनी सेहत के साथ कि हजारों करोड़ों साल से इसके अंदर कोई फर्क नहीं आया, इससे ये पता चलता है कि ये सब करने वाला एक अल्लाह है। वश्शम्स वल क़मरा हुस्बाना, और हुस्बाना के मुफस्सरी ने ये मानी भी बयान किए कि एक ऐसे हिसाब से हैं कि इससे फिर कैलेंडर पैदा हुए, कि इंसान ने जो है वो कैलेंडर जो है वो बनाए जिससे इंसान को पता चला कि ये महीने और साल जो हैं ये कैसे बदलते हैं। तो ये सब करने वाला कौन है? ये अल्लाह ताला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये दलील दे रहे हैं कि सूरज और चांद और रात और दिन का जो निजाम है ये बनाने वाला अल्लाह है, कि इंसान इनसे फायदा उठाता है, कैलेंडर बनाए जाते हैं, और इंसान जो है अगर ये सूरज और चांद इनमें मुनासिब फासला ना होता, तो अगर जरा सा फासला कम होता या ज्यादा होता तो गर्मी की शिद्दत से इंसान जमीन पर ना रह सकता, अगर फासला कुछ ज्यादा होता तो जमीन के बड़े हिस्से पर बर्फ जमी रहती और जमीन के ऊपर इंसान का जिंदा रहना जो है, उसका वजूद जो है ये नामुमकिन हो जाता। ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये ठहराई हुई बात है ऐसी जात की जो कादिर है, बड़े इल्म वाला है। तो ये सब उसी जबरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए अंदाजे हैं। अगर आप गौर करेंगी तो इन दोनों आयतों में आपने जो है ना वो तजाद के बारे में पढ़ा है। आपस में जो है आपने ये देखा है कि आपस में इनके अंदर एक इख्तलाफ है, जैसे दिन रात सूरज चांद। दिन में रोशनी होती है कि इंसान काम कर सके, रात में अंधेरा है कि इंसान आराम कर सके। सूरज में जो है वो गर्मी है, उसकी रोशनी जो है वो तेज है, और चांद जो है उसकी रोशनी जो है वो ठंडी है। तो इसी तरह एक जिंदगी है, एक मौत है। तो दुनिया के बाद जो है एक दूसरी जिंदगी आएगी जिसमें अल्लाह ताला जो है वो सबका फिर हिसाब लेगा। तो ये जो सारे दलाइल हैं ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि एक ऐसा दिन आना जरूरी है जब इंसान जो है उसको उसके किए हुए अमाल का जो है वो बदला मिल सके। वह वल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू, और वही तो है कौन, अल्लाह ताला, वही तो है अल्लज़ी जअला, जिसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए, अन्नुजूमा सितारों को, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए, लितहतदू बिहा, ताकि तुम जो है वो रास्ते मालूम कर सको। तो सितारों के जरिए तुम रास्ते मालूम कर सको, कहाँ पे, फी जुलुमातिल बर्री वल बहर। जुलुमात जो है ये जुलमत इसका वाहिद है, जुलुमात इसकी जमा है, रूट है जोए लामीम, और बुनियादी तौर पर इसके मानी अंधेरे के होते हैं। जैसे जो है वो जुलमत अंधेरे को भी कहते हैं, और जुल्म के मानी शिरके भी होते हैं। तो असल में शिरक के अंधेरों में जब इंसान भटकता है तो और फिर रास्ता जो है वो भूल जाता है। तो तौहीद जो है वो रोशनी है, हदायत का रास्ता है। तो फरमाया यहाँ पे सितारों का एक मकसद बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सितारे पैदा किए, सितारे बनाए, ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में इनसे रास्ते मालूम कर सको। अब देखें कि यहाँ पर जो है ये सितारों का एक मकसद बताया जा रहा है, क्योंकि सूरज और चांद के बाद सितारों की तरफ तवज्जो दिलाई। सितारे अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा किए हैं। आप कभी जो है वो नीले आसमान को देखें, जगमग जगमग करते सितारे जो हैं बड़े भले लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और सितारों के कुरान मजीद में तीन मकसद बताए गए हैं। उनमें से एक मकसद हमारे सामने यहाँ पर आया कि इसके जरिए से जो है वो रास्ता मालूम किया जाए। सितारों का दूसरा जो बड़ा मकसद है वो भी हमें कुरान से पता चलता है, और आपने जैसे सूरत मुल्क को पढ़ा होगा, सूरत मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि सितारे जो है वो क्यों पैदा किए। उसका एक और मकसद हमारे सामने आता है, और वो ये है कि सितारे जो हैं अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए ताकि, वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, ताकि इसके जरिए जो शयातीन है उनको मार भगाया जाए। और इसी तरह से सूरत मुल्क में सितारों का एक और मकसद भी हमारे सामने आता है, और वो ये है कि आसमान को सजाने के लिए, आसमान की जेबो जीनत का जरिया बनाया, कि आसमान पर अल्लाह ताला ने जब तारे बनाए तो इसका मकसद क्या है, वलकद ज़य्यना समा अद्दुनिया बिमसाबीहा, कि हमने इन चिरागों को शयातीन के मारने के लिए बनाया और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से सजा दिया। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीनी वअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। तो सूरत मुल्क की आयत नंबर 5 में हमें सितारों के दो मकसद और पता चलते हैं। तो इस तरह कुरान से हमें सितारों के तीन मकसद सामने आते हैं। सूरत मुल्क की आयत से दो मकसद, एक आसमान की जेबो जीनत का जरिया, दूसरा जो है शयातीन जो के आसमान पर जाकर कुछ सुनगुन लेने की कोशिश करते थे तो सितारों के जरिए उन्हें मार भगाया जाता था, और तीसरा ये कि सहरा और समंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया। कद फसलनल आयाती लिकौमे यालमून, फरमाया कि देखो हमने निशानियां खोल खोल कर बयान करती हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। अब अहले मक्का मुतालबा करते थे निशानी का, मोजे का, और अल्लाह ताला ने उनके इन मुतालबात के जवाब में कहा कि कायनात में बिखरी हुई निशानियों को देखो, जो हर तरफ जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं, और अगर तुम देखोगे तो हदायत पा जाओगे। तो यही इसका मतलब है, कद फसलनल आयाती लिकौम यालमून, तो जो हदायत पाना चाहते हैं तो उनके लिए एक निशानी भी काफी है, और जो हदायत नहीं पाना चाहते तो कायनात जो कि अल्लाह की निशानियों से भरी पड़ी है, अल्लाह के दलायल और मौजजात से भरी पड़ी है, तो फिर जो अकल के अंधे हैं, जो दिल के अंधे हैं, उनको ये निशानियां जो है वो नजर नहीं आती। तो ये है असल बात के कद फसलनल आयाति लिकौम यालमून। तो एक होता है इल्म और एक होता है उस पे गौर व फिक्र, तदब्बुर, तफक्को। तो यहां पर जो है अल्लाह ताला ने गौर व फिक्र की दावत दी है कि इल्म भी हासिल किया जाए और उसके बाद जो है वो गौर व फिक्र किया जाए, क्योंकि दिल तो है लोगों के पास, लहुम कुलूबुल्ला यफकहून, लोगों के पास आंखें तो हैं लेकिन फहुम ला युबसिरून, लोगों के पास कान तो हैं फहुम ला यस्माउन, तो लोग क्या करते हैं कि उनका इस्तेमाल नहीं करते। अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और दलील दी, वहुव अल्लज़ी अनशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, वही अल्लाह तो है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, एक जान से पैदा किया। अब आप देखिए कि यहां पर जो है अनशाकुम, जिसके मानी ये हैं कि उसने जो है पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, फमुस्तकर्रुन व मुस्तौदा, बस एक ठहरने की जगह है, जैसे फमुस्तकर्रुन काफरारा करार से है जिसका मतलब है जैसे ठहर जाना, तो एक ठहरने की जगह है, व मुस्तौदाउन और एक सौंपे जाने की, सपुर्द किए जाने की, तो व मुस्तौदा उनका रूट है वो दाल ऐन, और इसके मानी है सपुर्द कर देना, सौंप देना, विदा कर देना। तो मुस्तकर उस जगह को कहते हैं जो किसी के लिए जाए करार हो, और मुस्तौदा के मानी होते हैं कि आर्जी तौर पर किसी चीज को कहीं पर जो है वो रख दिया जाए। तो यहां पर जो है दो बातें हमारे सामने आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे मुराद क्या है, मुस्तकर और मुस्तौदा जो है इससे मुराद क्या है। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहां पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तकर का जिक्र किया है, एक राय ये है, बल्कि अक्सर मुफस्सरीन के नजदीक मुस्तकर से मुराद मां का पेट है, रहम मादर, और मुस्तौदा से मुराद जो है वो बाप की पीठ है, सुलबे पिदर। तो दरअसल जैसे जो है वो ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि इंसान जो है वो कहाँ से पैदा होता है, इंसान जो दुनिया में वजूद में आता है तो उसके वजूद में आने के लिए क्या चीजें जो है वो इसमें फायदा देती हैं या इसमें जो है वो काम करती हैं। तो फरमाया कि ये जो है माँ और बाप का जब आपस में मिलाप होता है और उनका जो नुतफा है, जैसे बाप की जो पीठ है उससे और रहम मादर से, तो उससे इंसान जो है वो वजूद में आता है। तो ये क्या है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं कि अल्लाह ने इंसान को जो है वो पैदा किया है। तो एक जीता जागता इंसान जो है वो अल्लाह ने बनाकर खड़ा कर दिया, तो ये क्या है, ये सब अल्लाह ही की कुदरत की निशानियां हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान को पैदा किया गया, और इस तरह के बाप की पीठ में नुतफा पैदा किया और उसे मां के रहम में पहुंचाया, कि बाप का नुतफा जब माँ के रहम में, माँ के पेट में जाता है, तो फिर इंसान जो है वहां पे तखलीक के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए आखिरकार जीता जागता इंसान जो है वो दुनिया में वजूद में आता है। तो ये अल्लाह की अजीम शान कुदरत की जो है वो निशानी है, ये अल्लाह के कमाल दर्जा कुदरत की निशानी है। तो पहले जिक्र किया अल्लाह ताला ने जमीन की निशानियों का, यानी नीचे की तरफ देखें, फिर ऊपर आसमान की निशानियों का जिक्र किया, और उसके साथ ही जो है हजरत इंसान का जिक्र किया कि इंसान जो है वो कैसे पैदा होता है। कद फसलनल आयाती लिकौम यफकहून। तो फिर इसके बाद जो है वो फरमाया कि अल्लाह ने जो है ये निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं, जो सोचते हैं। यफकहून फे काफा, और इसके मानी होते हैं सूझबूझ हासिल करना, गौर करना। क्योंकि जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो तिल भी नजर आता है, छोटा सा रेत का जर्रा भी नजर आता है, और जब इंसान गौर व फिक्र नहीं करता तो फिर पहाड़ भी नजर नहीं आते। फिर यहां पर मजीद अल्लाह की कुदरत की निशानियां बयान की जा रही हैं, और बड़ी खूबसूरत जो है वो मिसाल है कि हर तरफ अल्लाह की रबूबियत की निशानियां देखो। वहु अल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई मा, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया। फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्ले शयइन, फिर इसके जरिए से हर किस्म की नबातात निकाली। पौधे खुद नहीं निकलते, अल्लाह ताला कहते हैं फ़अख़रजना बिही, फिर इस पानी के जरिए हमने पौधे निकाले। नबाता कुल्ले शयइन, हर तरह की नबातात। फ़अख़रजना मिनहु खदरन, और फिर इससे हरे भरे दरख्त और खेत पैदा किए। खदरन जो है ये सब्ज को कहते हैं, तो खेत और पौधे जो है वो सरसब्ज होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे सब्ज का खास तौर पर जिक्र किया कि फिर हरे भरे दरख्त और खेत पैदा किए। नुखरेजू मिन्हु हब्बा मुतराकिबा, नुखरेजू हम निकालते हैं इससे हब्बन दाना, मुतराकिबा तह बर तह चढ़ा हुआ। अब आप देखिए कि हब्बन दाने को कहते हैं, और मुतराकिबा जो है इसका रूट है रा काफ बा, और इसके मानी है रकेबा का मतलब होता है सवार होना। राकिब कहते हैं घुड़सवार को, और ऊंट के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और अब यहाँ पे है मुतराकिबा, मुतराकिबा के मानी है कि एक पर दूसरा चढ़ा हुआ। और कभी आपने जो है वो अगर गंदुम के सिट्टे को देखा हो, उसके खोशे को देखा हो, तो गंदुम जो है उसको अगर आप देखें तो कैसे होता है कि एक दाने पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, ऐसे लगता है जैसे जो है एक दूसरे पर वो सवारी कर रहे हैं। तो मुतराकिबा यहाँ पर यही जो है वो बता रहा है कि गंदुम के दाने एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ। आप अनार को देख लें कैसे एक पर दूसरा जो है वो चढ़ा हुआ होता है। इसी तरह मकई के दाने, जो मकई का सिट्टा होता है, इसको आप देखें, ये जो कॉर्न होते हैं, कि ये कैसे साथ साथ जो है एक दूसरे के लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो दाने हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। वमिन नखली मिन तलीहा किनवान उन दानिया, और खजूर में से, नखल जो है ये खजूर के लिए इस्तेमाल होता है, और खजूर से मिन तलीहा, और तली जो है इसके गाबे से, किनवान उन, किनवान उन खोशे, दानिया तुन झुके हुए लटके हुए। अब आप देखिए कि यहाँ पे तीन लफ्ज जो है वो खास तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, और एक है तलीहा, तो ए लाम ऐन, इसके लुगवी मानी है नमूदार होना, जाहिर होना, सामने आना। और जैसे सितारों के तुलू और गुरूब होने के लिए भी आता है ना, जैसे सूरज तुलू हुआ, सितारे तुलू हुए, इसी तरह तो ए लाम ऐन जो है इस नए खोशे को भी कहते हैं जब वो अपने शगुफे या खजूर के गाबे से नमूदार होता है। और दूसरा लफ्ज है किनवानुन, किनवानुन भी खोशे के लिए आता है, काफ नून वो, काफ नून वो इसका रूट है, और किन जो है ये वाहिद है, और किनवान इसकी जमा है। और ये लफ्ज सिर्फ खजूर और अंगूर के गुच्छे के लिए आता है, ऐसा खजूर और अंगूर का गुच्छा जो अभी तोड़ने के काबिल ना हुआ हो, अभी पूरी तरह जो है वो तैयार नहीं है, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे तली जो है ये भी गुच्छा है, जो के फलों का गुच्छा जो के निकलता है, और अभी नया नया खोशा जो है वो तुलू हुआ है। और लेकिन जब किनवान लफ्ज इस्तेमाल होगा तो खास तौर पे खजूर और अंगूर के गुच्छे के लिए आएगा। तो यहाँ पे फरमाया कि वो अल्लाह ही है कि जिसने जो है वो खजूर के शगुफों से फलों के गुच्छे पैदा किए। वा मिन नखली मिन तलीहा, कि खजूर के शगुफों से किनवान गुच्छों के गुच्छे दानिया तुन झुके हुए। तो दानिया जो है ना, जैसे दुनिया करीब है तो दानिया तुन करीब, जैसे कुछ गुच्छे दूर होते हैं तो कुछ करीब होते हैं, तो दानिया तुन जो कि ऐसे गुच्छे हैं झुके हुए हैं, अब इतने भारी हैं कि लटक रहे हैं। बोझल खोशे, ये कौन पैदा करता है? अल्लाह। वजन्नातिन मिन आनाबिन, और बागात हैं अंगूरों के। वज़ैतूना, और जैतून के। तो आनाब जो है ऐन नून बा, ये लफ्ज अंगूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अनाब अनाब बहुत से अंगूर। वज़ैतून इसका रूट है जे या ता, जैतून ऑलिव अक्सर आप लोग खाते ही हैं, बहुत पसंद करते हैं। और वर्रुमाना, रुमान का लफ्ज जो है ये अंगूर अनार के लिए इस्तेमाल होता है, अनार के फल को कहते हैं, और इसका रूट है रा मीम नून। मुश्तबेहं वगैरह मुताशाबे, तो मुश्तबेहन शीन बाहा, और इसके मानी होते हैं जैसे जैसे किसी चीज में जब शुबा होता है ना, तो कभी वो चीज मुख्तलिफ लगती है कि किसी से मिल नहीं रही, और कभी लग रहा होता है कि जैसे मिल रही है ना, जैसे ट्विन्स अगर कोई है तो उनका पता नहीं चलता। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है वो अंगूर जैतून अनार जो एक दूसरे से मिलते भी हैं और एक दूसरे से हटकर भी हैं, गैरा मुताशाबे, और हर एक की खसूसियत जुदा जुदा भी हैं। इसके मानी ये हैं, अगर आप देखें जैसे अंगूरों को अगर आप देखें तो सबज भी होते हैं और ब्राउन से भी होते हैं, रेड से भी होते हैं। इसी तरह आप जैतून को देखें कि काले भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं। अनार को आप देख लें, अनार सफेद भी होते हैं और रेड भी होते हैं। फिर आप देखें कि ये खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। और वैसे भी जैतून और अनार के जो पत्ते होते हैं ना, ये आपस में बहुत मिलते हैं, बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि ये किसका पत्ता है। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि एक जमीन एक पानी उनको मिला, और एक तरह का दाना लगाया, और ऊपर जो शाखों पर फल लगे, तो कितनी किस्म के आपस में मिलते जुलते भी हैं और आपस में उनकी खसूसियात जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। तो ये सारा कुछ देख कर दिल गवाही देता है कि ये अल्लाह की कुदरत, हिकमत और उसकी रहमत की निशानियां हैं। और ये सारे फल फूल देखने के बाद जब इंसान गौर व फिक्र करता है, तो फिर वो शिर्क को छोड़कर एक अल्लाह की पूजा करने लगता है कि जिस रब ने जो है वो एक मट्टी, एक पानी, एक दाने से अनवाउ उकसाम की चीजें पैदा कर दी, जो रंग शक्ल जायके और कद में मिलती जुलती भी हैं और नहीं भी मिलती जुलती। तो ये करने वाला कौन है? ये अल्लाह है। लेकिन इंसान का हाल भी बड़ा अजीब है कि फल खाता है, छिलके फेंक देता है, खुशबू सूंघता है, फूलों को मसल देता है, चीजों से दिलों को लुभाता है, आंखों को जो है वो फरेश्ता करता है, और इन सारे चीजों का इस्तेमाल करने के बाद जो है फिर वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बनता, फिर वो शिर्क करने लगता है। तो कहा जा रहा है कि गौर व फिक्र करो। उनजुरु, उनजुरु के मानी क्या है? कि देखो कि ये जितनी चीजों का यहाँ पे जिक्र है ना, इनमें से एक एक चीज को लेकर, इसके फलने से लेकर इसके पकने तक, जमीन में बोने से लेकर उसके उगने तक, तमाम मरहलों में से एक एक मरहले को देखो और गौर व फिक्र करो कि ये सब अल्लाह के हुस्न व जमाल की निशानियां हैं। और अहले मक्का मौजजा मांगते थे, निशानी मांगते थे। कहा कि आंखें हों तो हर शाख मौजजा, हर फूल मौजजा, हर फल मौजजा, छोटी से छोटा बीज मौजजा, हर दरख्त का और हर फूल का पत्ता जो है वो मौजजा। मैं गुल को देखता हूं तो खालिके गुल की सोचता हूँ, मैं गुल को देखता हूं तो खालिके गुल की सोचता हूं। और जो एक अच्छा अल्लाह से डरने वाला इंसान है तो वो फौरन फूलों को देखकर अल्लाह के बारे में सोचता है कि फूल इतना खूबसूरत है, इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। फूल को देखते रहना, गुल को देखते रहना तो कोई बात नहीं। तो अब आप आम के, आजकल जैसे आम का मौसम है, आप देखें कि एक आम की कितनी बहारें हैं, कि आप जो है वो जो आम का दरख्त है, तो बाज लोग वो कच्चा आम तोड़कर जो है वो उसकी चटनी बनाते हैं, और फिर अचार बनाते हैं, फिर उसका मुरब्बा बनाते हैं, फिर आम खाते हैं। फिर आम भी तरह तरह के, गुठली छोटी है बड़ी है, चूसने वाले हैं, काट कर खाने वाले हैं, फिर मिल्क शेक बनाते हैं। फिर बाज लोग न्यूयॉर्क में, एक दफा एक दोस्त के घर जाने का इत्तफाक हुआ अफ्तारी पर, तो उन्होंने जो है वो मैंगो शेक बनाया हुआ था। आम का मौसम नहीं था, सर्दी का मौसम था। बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा आपने कैसे बनाया? तो कहने लगी कि मैंने आम की जो आम को काट कर सेव कर लिया था, फ्रीज कर लिया था, तो अब जो है मैंने उसका जो है ये मिल्क शेक बनाया। तो अगर आप देखें तो हम सब अल्लाह की नेमतों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है कि उनजुरु, तुम सब जरा गौर की नजर से देखो, इला समरे ही, इसके पकने की तरफ, इजा असमरा, जब ये पके, वयन ए ही जो है इसका रूट है, या नून आयन, इसका मतलब है फल का बिल्कुल पककर तैयार हो जाना। तो जब फल जो है वो पककर बिल्कुल तैयार हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दावत दे रहे हैं कि तुम उसकी तरफ जो है वो देखो। तो अगर वाकई इंसान जो है वो कायनात में जो अल्लाह की निशानियां हैं उनको देखे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान जो है वो फिर तौहीद परस्त बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान अल्लाह की इन नेमतों की तरफ देखे और उसके बाद फिर शिर्क करे, फिर वो अल्लाह को भूल जाए, फिर वो जो है वो जो दूसरे माबूद हैं उनको जो है वो पुकारने लगे। तो कहा कि तुम जो है वो फलों की तरफ देखो, और उसका पकना भी, और उसका पककर जो है बिल्कुल तैयार हो जाना। इन्ना फी ज़ालिकुम लआयातिल लिक़ौमि युमिनून, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। तो आप देखें कि पिछली तीन आयात को अगर आप देखें, पहले फरमाया कद फसलनल आयाति लिक़ौमि यालमून, आयत नंबर 97 के आखिर में, आयत 98 के आखिर में कद फसलनल आयाति लिक़ौमि यफ़क़हून, और आयत 99 के आखिर में इन्ना फी ज़ालिकुम लआयातिल लिक़ौमि युमिनून। तो असल बात क्या है कि अहले मक्का के जो मौजज़ात के मुतालबात थे, तो उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कायनात से, जमीन से, आसमान से, इंसान के अपने वजूद से निशानियां जो है वो गिनवाई हैं, ताकि लोग शिर्क छोड़कर तौहीद परस्त बने। वजअलू लिल्लाहि शुरका अल-जिन्ना, इस पर भी लोगों ने जिनों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। तो बजाय इसके कि लोग अल्लाह वाले बनते, तो उन्होंने समझा कि कायनात के निजाम में इंसानों की किस्मत के बनाने और बिगाड़ने में दूसरी पोशीदा हस्तियों का हाथ है, और उन्होंने जो है वो जिन्नों को जो है वो खुदाई में शामिल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वा खलाकहुम, क्या फरमाया? वा खलाकहुम, और हालांकि जिन्नों को अल्लाह ने पैदा किया है, वखरकू लहू बनीना, वखरकू और जो है वो तराश रखे हैं और बांध रखे हैं इसके लिए बेटे, व बनातिन और बेटियां, बगैर इल्म, बगैर इल्म के। तो खरका जो है, खरका ख़ा रा क़ाफ़, इसके मानी होते हैं फाड़ना, फाड़ना। अब आप देखें कि अब लोगों ने क्या किया, खराकू। और वैसे अगर आप देखें तो मानी है फाड़ना, और फाड़ने को अगर आप देखें जैसे कोई चीज जो है वो फाड़ ही दी जाए ना, किसी चीज को फाड़ना, खराब कर देना, तोड़ फोड़ देना, बिगाड़ देना। खरका जो है कपड़े के चीथड़े को भी कहते हैं। तो इसी तरह जैसे कपड़ा तो आम साफ साफ सुथरा और पूरा साबत होता है ना, सही सालिम, अगर उसको फाड़ कर उसके चीथड़े कर दिए जाए तो इसका मतलब बड़ी अजीब बात कर दी जाए। तो लोगों ने क्या किया, वह खुराकू, और उन्होंने बना डाली, तसनीफ कर दी अल्लाह के लिए बेटियां और बेटे। तो फरिश्ते जो थे, फरिश्तों को अहले मक्का अल्लाह की बेटियां कहते थे। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सी बदरूहें, शयातीन, देवता, देवियां, उनके बारे में ये अकीदा था कि ये जो है ये भी खुदाई में जो है वो शामिल है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन सारी चीजों का खालिक अल्लाह, और इस पर भी लोगों ने अल्लाह के बेटे और बेटियां जो थी बना डाली। बताला अम्मा यसिफून, हालांकि अल्लाह पाक है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। बदीउस समावाति वल अर्द, बनाने वाला आसमानों का और जमीन का। अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का तारुफ करवाया जा रहा है कि अल्लाह की जात जो है वो कैसी है, कि बदीउ, बदीउ का मतलब होता है जैसे जो है वो नए सिरे से पैदा करना। बा दाल ऐन इसका रूट है कि अल्लाह है जो के बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, मूजद है आसमानों का भी और जमीन का भी। अन्ना यकूनु लहू वलदुन, और उसका बेटा कैसे हो सकता है, क्यों कर है उसके लिए बेटा। वलम तकुल लहू साहिबा, वलम तकुल लहू साहिबा, जबकि उसकी कोई शरीके जिंदगी नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है। वह खलक कुल्ला शई, इसने हर चीज को पैदा किया। वह हुआ भी कुल्ली शई इन अलीम, और वो जो है वो हर चीज का इल्म रखता है। रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब। ये सारी दलीलें देने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सब कुछ जो पैदा करने वाला है ना, ये है अल्लाह तुम्हारा रब। ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। खालिकु कुल्ले शई, हर चीज का खालिक, हर चीज को पैदा करने वाला। खालिकु कुल्ले शईइन फाबुदू, इसको आप सर्कल कर लें। ये सारे दलाइल देने के बाद अल्लाह एक बात चाहते हैं आपसे भी, मुझसे भी, तमाम लोगों से, और वो क्या, फाबुदू, कि बस तुम उसी की इबादत करो, अपना आप उसके सुपुर्द कर दो, उसका कहना मानो। वहु आला कुल्ले शईइन वकील, और वो अल्लाह हर चीज का कफील है, हर चीज जो है उस पर निगरान है। तो ये है अल्लाह जो कि हर चीज का हकीकी कारसाज है। तो अगर इंसान अल्लाह को छोड़कर जो है वो बुतों की इबादत करेगा, इंसान शिर्क करेगा, तो वो इंसान को नफा नहीं दे सकते। तो अल्लाह है नफा देने वाला, अल्लाह को अपना वकील बना लीजिए। हसबुनल्लाहु निमल वकील व निमल मौला व निमल नसीर। ला तुद्रिकुहुल अबसार वह हुआ युद्रिकुल अबसार, फरमाया कि वो अल्लाह नहीं पाती उसको निगाहें, निगाहें उसको नहीं पा सकती, और वो निगाहों को पा लेता है। वह लतीफुल खबीर, और वो निहायत बारीक और बाखबर है। अब जो है ये ऊपर की जो पूरी दलील बयान की गई है, अल्लाह ने अपनी सिफात जो बताई हैं, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह बड़ा बारीक बीन है, बड़ी खबर रखने वाला है। कोई चीज कितने ही पर्दों में क्यों ना छुपी भी हो, अल्लाह की निगाहें उस तक पहुंच जाती हैं। कोई चीज जितनी ही पोशीदा क्यों ना हो, कितनी ही पोशीदा क्यों ना हो, पहाड़ों के नीचे, जमीन के अंदर, कहीं भी वो छुपी हुई हो, हर आन हर लम्हा अल्लाह उससे बाखबर है। तो अगर इंसान छुपना चाहे, अपने अमाल को छुपाना चाहे, तो अल्लाह से छुपा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह जो है वो सबको देख लेता है। लेकिन इंसान की निगाहें जो हैं वो अल्लाह को पाने से कासिर है, इंसान जो है वो अल्लाह को पा नहीं सकता। कहा ला तुद्रिकुहुल अबसार, निगाहें उसको नहीं पाती लेकिन वो निगाहों को पा लेता है। तो जो चोरी की निगाहें हैं वो उनको भी देख लेता है, जो अच्छी निगाहें हैं वो उनको भी पा लेता है। तो ये अल्लाह है जो कि पूरी दुनिया पर, पूरी कायनात पर हुकूमत कर रहा है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप मुझे नहीं देख सकते लेकिन आप पहाड़ की तरफ देखें, अगर वो अपनी जगह जमा रहा तो आप मुझे देख सकेंगे। जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। सूरत अल आराफ आयत 143 में आप पढ़ सकती हैं। और इंसान जो है कयामत के दिन, जो मोमिन है वो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। वजूहुन यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे उस दिन पुर रौनक होंगे और वो अपने रब को देख रहे होंगे। और बुखारी की रवायत से पता चलता है कि जन्नत की जो है वो सबसे बेहतरीन नेमत और नेमतों की जो तकमील कर देगी वो अल्लाह का दीदार होगा, जो कि लोगों मुत्तकी और नेक लोगों को जो जन्नत में होंगे उन्हें करवाया जाएगा। तो ये है अल्लाह जो कि सारी कायनात की हकीकतों से जो है वो आगाह है। तो फिर क्या करना चाहिए कि अल्लाह से डरते हुए अपनी जिंदगी जो है वो बसर करनी चाहिए। कद जाएकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, देखो तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां तुम्हारे पास आ गई हैं। तो बसायर जो है ये बसीरा की जमा है और असल में दिल की रोशनी को कहते हैं। इससे मुराद है दिल की रोशनी। और कुरान में जो सूझबूझ के मानी है उसके लिए बसायर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। दलाइल और कुरान मजीद उसकी आयात के आंखों से पर्दा जो है वो हटता है, लेकिन कौन कब हटता है? जब लोग आंखें खोलें। कज्जा अकुम बसायरो रब्बिकुम, लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से कुरान की आयात आ गई हैं, ये है मौजज़ा। फमन अब सरा फले नफसे ही, अब जो शख्स जो है आंखें खोलेगा, अब सरा जो देखेगा, फले नफसे ही तो अपने ही लिए उसने भला किया। वमन अमिया, और जो अंधा बना रहा, फालैहा, तो वो खुद नुकसान उठाएगा, उसके अपने ही लिए उसने बुरा किया। वमा अना अलैकुम बेहफीज, और नहीं मैं तुम पर जो है वो पासबान निगहबान। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अहले मक्का से जो मौजे का मुतालबा करते हैं आप उनको ये बात बता दीजिए कि मेरा काम तुम तक जो है ये रोशनी, ये बसायर, ये कुरान, ये आयात को पेश करना है। अगर आंखें खोलोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, अमल करोगे तो अपना ही फायदा, नहीं करोगे तो खुद ही नुकसान उठाओगे। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और मैं तुम पर जो है कोई पासबान नहीं हूँ, कोई दरोगा या पुलिसमैन नहीं हूँ। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाती, और इसी तरह फेर फेर कर हम बयान करते हैं आयात। वलियकूलू, ताकि वो कहें दरस्ता के तू सीखा हुआ है। वले नुबैयनहू, और बयान करें हम इसको लकौमी आलमून, उन लोगों के लिए जो के इल्म रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि इस तरह हम अपनी आयात को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें कि तुम किसी से पढ़कर आए हो, और जो इल्म रखते हैं इन पर हम अपनी हकीकत को जो है वो रोशन कर दें, नुमाया कर दें। अब आप देख लीजिए कि जो है वो यहाँ पर जो है बात बताई जा रही है और इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है दरस्ता का। दरस्ता इसका रूट है दाल रौ सीन, दरसा। दरसा के मानी होते हैं कि घिसना, मिटाना। इसी तरह दरअसल रसम, निशान को मिटा दिया। आदमी जब किसी चीज को कसरत से पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, फिर जैसे उंगली रख कर एक एक हरफ को मुतय्यन करते हुए जब इंसान पढ़ता है तो मजहबी सहीफों की तिलावत के लिए, क्योंकि हाथ रख कर, उंगली रख कर और बार बार पढ़ना, तो उस वक्त पढ़ते वक्त ना आमतौर पर नुस्खे घिस जाते हैं। तो इसी तरह ये दरअसल लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है किसी किताब को अच्छी तरह बार बार पढ़ने के लिए। तो जैसे आप आम भी इसका इस्तेमाल करती हैं कि जो है वो आए दर्स कर ले, दर्स दे ले, तो दरअसल पढ़ना पढ़ाना, एक दूसरे को पढ़कर सुनाना। और वैसे दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि कपड़े का पुराना होना, या वो जो लफ्ज है जिस पर उंगली रखकर पढ़ते हैं घिस जाते हैं, जैसे कि पुराने हो गए ना, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इल्म, इल्म को याद करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। मुसलसल पढ़ना, बाकायदगी से पढ़ना, तो बाकायदा सीखना, उसको याद करना, उसके लिए दर्स आता है। तो अहले मक्का क्या करते थे, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते थे। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ये कैसा कुरान है, पहले भी आप पढ़ चुकी सूरत अल बकरा में कि जिसमें मच्छर, मकड़ी और ऐसी जो है वो बड़ी हकीर सी चीजों को का बयान किया गया है। और फिर वो क्या कहते थे कि ये जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह का कलाम होता तो अल्लाह के कलाम में ये हकीर चीजों का जिक्र जो है वो क्यों होता। अब यहाँ पर जो है यही बात जो है वो बताई जा रही है कि हमने कुरान को बार बार बयान किया है मुख्तलिफ तरीके से, नुसर्रिफु सर्रफा युसर्रिफु का मतलब होता है फेर फेर कर, जैसे मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ दलीलों से। जैसे आप एक तौहीद को ही देख लें, आज के सबक में आपने कितनी दलीलें पढ़ी हैं कि कभी ऊपर से बारिश को नाजिल किया तो कैसे जमीन में फल फूल उगे, कभी दाना जो है वो कैसे जो है उससे फल फूल पैदा हुए, कभी रात दिन सूरज चांद सितारे, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान की जो है वो पैदाइश की इब्तदा। तो अल्लाह ताला ने तौहीद ही को अगर ले लें और बेशुमार अल्लाह की जो निशानियां हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने मुख्तलिफ तरीके से बयान किया, वले यकूलू, और यहाँ पे ये भी है कि ताके वो कहें, यानी काफिर लोग कहें कि आप कहीं से सीख कर आते हैं फिर सुनाते हैं। वो ये इल्जाम लगाते थे ना कि रसूल अल्लाह पर कोई फरिश्ता नहीं नाजिल होता, बल्कि ये किसी से पढ़कर आते हैं और फिर आकर सुना देते हैं। तो यहाँ पर इसका तर्जुमा यू भी है कि ताके वो कहें कि तूने किसी से पढ़ लिया है, और एक मानी ये भी है कि इसलिए मुख्तलिफ तरीके से बयान किया है ताकि काफिर ये ना कहें दरअसल क्या आपने किसी से पढ़ लिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि मैंने इतने खूबसूरत दलाइल दिए हैं ताकि काफिर जो है वो रसूल अल्लाह पर, कुरान पर कोई उंगली ना उठा सके और कोई जो है वो एतराज ना कर सके। लेकिन वो क्या कहते थे कि बस ये जो है ना कोई इनको सिखा जाता है, और कभी कहते थे किसी से पढ़ लिया है, और अल्लाह ताला कहते हैं हालांकि ये आयात मैंने जो है वो बयान की हैं, वले नुबय्यनहु लिकौमि यालमून, ताकि अहले इल्म पर इनको वाजे किया जाए। इत्तबे मा उहिया इलैका मिन रब्बिक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पैरवी कीजिए उस वही की जो आपके रब की तरफ से आपकी तरफ जो है वो नाजिल की जाती है, आपको वही की जाती है। ला इलाहा इल्लाहू, कोई नहीं माबूद मगर वही एक। व आरिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन जो है उनसे एराज कर लीजिए, मुशरिकीन के पीछे मत पड़िए। वलौ शा अल्लाहु मा अशरकू, और अगर अल्लाह की मशीयत ये होती, अगर अल्लाह ये चाहता तो लोग शिर्क ना करते, यानी अगर अल्लाह चाहता तो उनको जबरदस्ती रोक देता, और कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी ना कर सकता। तो अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। तो अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए, इसलिए दुनिया में जो है वो इम्तिहान हो रहा है। वमा जअलनाका अलैहिम हफीजा, और तुमको हमने इन पर पासबान मुकर्रर नहीं किया कि जबरदस्ती करें आप। वमा अंता अलैहिम बेवकील, और ना ही आप इन पर जो है कोई हवालादार हैं, तो ना आप हिफाजत करने वाले हैं, मुहाफिज नहीं हैं, ना ही आप इनके जिम्मेदार हैं। तो फिर रसूल अल्लाह की हैसियत थी क्या? दाई की हैसियत थी, मुबल्लिग थे, कोतवाल नहीं थे। आपका काम था ان تک دین کا کام پہنچانا، دین کا پیغام پہنچانا، اور اگر وہ مانتے یا نہ مانتے پھر ان کی رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں تھی. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر فرمایا اے مسلمانوں، وَلَا تَسُبُّ، اور گالی نہ دو، سین با با، فحش گالیاں دینا، تو اے مسلمانوں گالی مت دو. الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. تو اے ایمان لانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، یعنی یہ جو مشرک ہیں جو اللہ کے سوا اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، تو تم ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو. يدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيَسُبُّ، پھر وہ گالیاں دینے لگے اللہ اللہ کو. عَدْوًا، دشمنی کی بنا پر، کہ تم گالیاں دو ان کے بتوں کو، معبودوں کو، اور نتیجے میں پھر وہ بھی کیا کرنے لگے کہ وہ جو ہیں وہ اللہ کو گالیاں دینے لگے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ زیادتی کرنے لگے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، عَدْوًا دشمنی، زیادتی، بغیر علم، بغیر علم کے. دراصل یہ آیت جو ہے یہاں پہ مومنوں کو اللہ تعالی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی عزت کریں، اللہ تعالی کی غایت درجہ جو ہے وہ تعظیم کریں. تو اللہ کی تعظیم کیسے؟ کہ جو کافر ہیں ان کے بتوں کو برا بلا نہ کہا جائے. اب جب کافر مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، تو بعض اوقات جو ہے وہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ مسلمان جو ہے ان کے بتوں کو جو ہے وہ کچھ کہیں. تو اب مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تبلیغ کے جوش میں اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ غیر مسلموں کے خداؤں کو، ان کے عقائد کو، بلیفز کو، اس کو برا بھلا کہنے لگے. یہاں تک کہ نتیجے میں پھر وہ کیا کریں کہ جب مسلمان ان کے بتوں کو گالیاں دیں گے، معبودوں کو گالیاں دیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو جو ہے وہ گالی دینے لگ جائیں. تو اس سے عمل کا کیا اصول نکلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ غیر مسلم جو ہیں، یا جو دوسرے لوگ ہیں، مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے اسلام کہ ان کے مذہب کی، ان کے خدا کی، ان کی جو ریلیجن ہے، مسلمان اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. اور اگر مسلمان ان کا احترام نہیں کرتے تو نتیجہ تن وہ اسلام کو، اللہ کو جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیں گے. اسی طرح ان کا گرجا ہے یا ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا بھی احترام کیا جائے. یہ ہے اصل چیز. تو جب انسان، مسلمان اس طرح کا اخلاق اختیار کریں گے تو یہ چیزیں ان کو اسلام کے قریب کریں گی، دور نہیں کریں گے. یہ ہے میرا اور آپ کا مذہب، جو کہ مجھے اور آپ کو جو ہے یہ بہترین جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر ایک کا جو عمل ہے نا، جیسے اس کی روایات ہیں، اس کی رسمیں ہیں، اس کو بڑی عزیز ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے قرآن میں نشانیاں تو کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لیکن ہر ایک کا عمل اس کے لیے جو ہے نا وہ خوبصورت بنا دیا گیا. زینا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے اس کو آزمائش بنا دیا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اس کے کیسے عمل تھے. اب آیت نمبر 109 میں اہل مکہ کا ایک مطالبہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. آیت نمبر 109 سے لے کر 111 تک. اب یہاں پہ اہل مکہ کا مطالبہ اور اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ اقسم اور یہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی. جہدہ, جہد جو ہے یہ سخت محنت کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو جہد کے معنی کیا ہے؟ سخت. ایمانہم قسمیں, تو انہوں نے کڑی کڑی سخت قسمیں کھائیں اللہ کی, اور قسمیں کھا کر یہ مطالبہ کیا, لئن جاءتہم, البتہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی نشانی, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر. اس سلسلے میں جو ہے وہ اہل مکہ کا جو تھا وہ مطالبہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ ہو جو ان کی خواہش کے مطابق ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی عصا, اور اسی طرح جو ہے وہ سمود قوم کا مطالبہ تھا اونٹنی کا, ناکہ سمود. پھر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے, تو ان کا اہل مکہ نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اگر صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے, جس پر جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ کوہ صفا کو جو ہے یہ سونے کا بنا دیں گے, اور پھر اس کے بعد ان کا ایمان لانا ضروری ہوگا, اگر انہوں نے انکار کیا تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جائے گی. تو یہاں پہ اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ, کہ بے شک نشانیاں جو ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں. اور آپ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ سخت سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی نشانی, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو یہ ضرور بضرور اس پر ایمان لائیں گے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, اللہ کا دل چاہے تو کوہ صفا سونا بنے, اور اللہ کا دل چاہے تو نہیں بنے, اللہ چاہے تو کوئی معجزہ نازل کرے اور اللہ چاہے تو نہ کرے. یہ تو اللہ کے پاس نشانیاں, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں معجزہ دکھا دوں. فما یشعرکم, اور کس نے بتایا تمہیں, انہا اذا جاءت لا یؤمنون, کہ وہ نشانیاں جب آئیں بھی تو یہ ایمان لانے والے نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے جو یہاں پہ کہی, وما یشعرکم, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے, انہا اذا جاءت لا یؤمنون, اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان لانے والے نہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, وَنُقَلِّبُ, اور ہم پھیر دیں گے, الٹ دیں گے, أَفْئِدَتَهُمْ, ان کے دلوں کو. تو یہاں پہ أَفْئِدَتَهُمْ جو ہے یہ دل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, فؤاد جو ہے یہ دل کو کہتے ہیں, اور أَفْئِدَة واحد ہے اور فؤاد اس کی جمع ہے. تو جیسے قلب بھی دل کو کہتے ہیں, تو جو جذبات انسان کے بدلتے رہتے ہیں تو دل کے اس حصے کے لیے فؤاد کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا, وَأَبْصَارَهُمْ, اور ان کی آنکھوں کو, كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ, جیسے یہ ایمان نہیں لاتے ان نشانیوں پر, اول مرتن, پہلی بار, وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا. اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کو, ایمان, اسلام کو پیش کیا, تو انہوں نے ایمان لانے کی بجائے انکار کیا اور معجزات کا مطالبہ کیا. تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے. وَنَظَرَهُمْ, تو وہ زال راز کا روٹ ہے اور چھوڑ دینا, وَنَظَرَهُمْ, اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں, فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں, توئے غین, وہ توئے غین یا اس کا روٹ ہے, سرکشی کے لیے آتا ہے, یا مہون, اندھے ہیں یہ, اور عین میم یا جو ہے یہ آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں, اور عین میم ہا جو ہے یہ دل کے اندھے کو کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ بھٹک رہے ہیں اپنی سرکشی میں, اپنی نافرمانی میں. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ, اور اگر ہم فرشتے ان پر نازل کر دیتے, وکلمہم الموتا, اور وہ وکلمہم, اور کلام کرتے ان سے, الموتا, مردے. بڑی عجیب بات ہے نا کہ آسمان سے فرشتے جو ہیں وہ آئیں اور مردے جو ہیں وہ باتیں کرنے لگیں. تو یہ کیا, یہ اللہ کے معجزات ہیں نا, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ, اور ہم جو ہیں ہر چیز اکٹھی کر دیں ان پر, قبولاً ان کے سامنے, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں. اب یہاں پر تین معجزات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم جو ہے وہ آسمان سے فرشتے نازل کر دیں, نمبر دو مردے ان سے باتیں کرنے لگے, کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ بولتے تو نہیں ہیں, لیکن معجزے کے طور پر مردے ان سے باتیں کرنے لگے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے. قبولن جو ہے جیسے قبل پہلے کو بھی کہتے ہیں, اور جیسے قبلہ سامنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تو اور یہاں پر کیا ہے قبولن, اس کے معنی کیا ہے سامنے, کہ دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ ان کے سامنے لا کر جو ہے وہ اکٹھی کر دی جائے, ان کے روبرو کر دی جائے. جیسے جیسے غیب کی جو چیزیں ہیں خاص طور پر, وحشرنا علیہم کل شئین قبولن, مفسرین کہتے ہیں جیسے جنت جہنم جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ ان کے سامنے آ جائے, کیونکہ یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں نا, فرشتے نظر نہیں آتے اور مردے جو ہیں بولتے نہیں ہیں. اسی طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپائی ہوئی ہیں تو اللہ اگر ان کے سامنے لے آئے, ما کانوا لیؤمنوا, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, الا یشاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ ہی ایسا چاہے, اللہ کی مرضی یہ ہو کہ یہ ایمان لے آئیں. ولکن اکثرہم یجہلون, مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کیا کرتے ہیں, اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انکار ہی کرتے ہیں, نادانی کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ نادانی کی باتیں کیا ہیں, یہ جو ان کی فرمائشیں تھیں, ان کا معجزات کا مطالبہ تھا, تو اس لیے نہیں تھا کہ یہ ایمان لانا چاہتے تھے, بلکہ اس لیے تھا کہ یہ انکار میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے بنایا ہے دشمن, شیاطین الانس والجنی, انسانوں اور شیطان جنوں کو, تو ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے, اور دشمن دو لوگوں میں سے ہیں, ایک انسانوں میں سے اور دوسرا جنوں میں سے, لیکن وہ ہیں کون, شیاطین ہیں, برے جو لوگ ہیں. یوں ہی بعدہم الی بعد, یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ القاء کرتے ہیں, یوں ہی جو ہے وہ دل میں ڈالتے ہیں, وہی جو ہے اشارہ کرنا, دل میں ڈالنا. تو یہ جو انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہیں جو ہر نبی کے دشمن ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ القاء کرتے ہیں. زخرف القول غرورا, زخرف القول غرورا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے, اور کلام کو جھوٹ سے آراستہ کرنا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ دھوکے کی باتیں جو ہے نا, جو دھوکے اور فریب کے طور پر جو باتیں ہوتی ہیں ان کو القاء کرتے ہیں, جو اچھی خوبصورت لگتی ہیں باتیں لیکن ہوتی وہ غلط ہیں, خوش آئند باتوں سے یہ شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. تو زخرف کسے کہتے ہیں, اس کو آپ سمجھ لیجئے, زخرف جو ہے اصل میں اس زینت کو کہتے ہیں جو ملمہ سے حاصل ہو, جیسے آرٹیفیشل بیوٹی جو ہوتی ہے, اور جیسے اسی وجہ سے سونے کو بھی زخرف کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی جب ملاوٹ ہوتی ہے تو وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح یہ جو پودے ہوتے ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور بہار آئی ہوئی ہوتی ہے اور پھل پھول, ان پر ایک نکھار ہوتا ہے, بڑے خوبصورت لگتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ زخرف لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو زخرف القول غرورا, اس کے معنی کیا ہے کہ ملمہ کی بھی باتیں غرورا, دھوکے کے لیے, ایسی باتیں جس میں جھوٹ کو شامل کیا جائے, جھوٹ کی ملاوٹ کی جائے, اور پھر وہ باتیں جو ہیں وہ اس وقت وہ بڑی ہی خوبصورت لگتی ہیں, بڑی ہی اچھی لگتی ہیں. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی کی آزمائش ہوتی ہے کیسے, کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو ہے شیاطین جو ہیں وہ نبی کے دشمن بنائے, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس سلسلے میں آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ जिन्नों में से भी शयातीन होते हैं और इंसानों में से भी शयातीन होते हैं। इसलिए कि बाज लोग जो हैं ये समझते हैं कि जो ये जो शयातीन हैं ये सिर्फ जिन्नों में से हैं, लेकिन मुसनद अहमद की रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए अबू जर, अल्लाह के जरिए जिन्नों इंस के शयातीन के शर से पनाह मांगो। हजरत अबू जर रजी अल्लाह उन्होंने कहा ए अल्लाह के नबी, क्या इंसानों के भी शयातीन होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, इंसान और जिन के शयातीन एक दूसरे को मुलम्मा की भी बात लोगों को धोखा देने के लिए पहुंचाते रहते हैं। तो उस जमाने में भी जो है वो जिन भी और शयातीन भी जो थे वो क्या करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खिलाफ लोगों को भड़काते थे। जैसे सूरत नास में भी तो हमें ये कहा गया है ना कि हम अल्लाह की पनाह में आए, इंसान जो हसद करने वाले हैं और जो जिन हैं और जो वसवसे डालने वाले हैं उनसे। तो यहाँ पे बहसियत मजमुई जो है वो बताया जा रहा है कि हर दौर में ऐसा हुआ कि नबी की मुखालफत हुई और शैतानी कुव्वतें जो हैं उन्होंने नबी के मिशन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के दीन को कोई मिटा ना सका। वलौ शा रब्बू का मा फालूहु, अगर अल्लाह चाहता, अगर अल्लाह की मशीयत ये होती तो वो ऐसा ना कर सकते। फजर हूं वमा यफ्तरून, आप उनको छोड़ दीजिए जो कुछ वो कर रहे हैं। वमा यफ्तरून फा रा या, और इसके मानी होते हैं जो है वो इफ्तरा, परदाजी करना, इल्जाम लगाना। तो जो कुछ भी ये शिरकिया बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, इनको करने दीजिए। और आज के दौर में भी आप देख लें कि जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो है बातिल कुव्वतें एड़ी चोटी का जो है वो जोर लगा रही हैं। और इस्लाम जो है जितनी उसकी मुखालफत हो रही है इस्लाम उतनी तेजी से जो है वो फैल रहा है। तो इंसान और जिन मिलकर कितना ही इस्लाम के खिलाफ मुखालफत का बाजार गर्म करें, दीन इस्लाम के लिए साजिशें घड़े, नित नए ढंग से जो है वो शिर्क के लिए जो है वो बाहमी गठजोड़ करें और नित नए हरबे इस्तेमाल करें कि लोगों को इस्लाम से हटाया जाए और दुनिया को जो है वो इस्लाम से जो है वो गुमराह किया जाए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो गुमराह नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो कभी ना करते, से मुराद क्या है कि अगर दुनिया में ये जो कुछ भी काफरों की कोशिशें हो रही हैं तो दरअसल अगर अल्लाह चाहता तो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं हक और बातिल के अंदर एक कशमकश हो, उसका एक मुकाबला हो और उसके बाद जो है हक गालिब आए और बातिल जो है वो सरनिगू हो जाए। हर दौर में एक फिरौन था और एक मूसा था, और हर दौर में इब्राहिम था और फिर एक नमरूद था, और फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो आखिरकार जो है वो हक को गालिब किया और जो बातिल था उसको जो है वो शिकस्त दी। तो यहाँ पर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि मौजों के जरिए इस्लाम को गालिब किया जाए और बातिल को मिटाया जाए, बल्कि हक और बातिल की कशमकश के बाद फिर जो है वो अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह के हुक्म से जो बातिल है वो मिट जाता है। वजा अल हकु वजहक अल बातिल इन्नल बातिला काना जहूका, और फिर दीन जो है वो गालिब आता है। वले तस्का इलैही, अब यहाँ पर जो है मजीद ये बताया जा रहा है कि जो आखरत पर और तौहीद पर ईमान नहीं लाते तो वो ये कोशिशें ये जुखरा फल कौली गुरूरा क्यों करते हैं। वले तस्का इलैही अफेदातु, तस्का के मानी होते हैं कि माइल होना, झुक जाना, इसका रूट है स्वाद गैन वो, और मानी है पूरी तरह झुकना। जैसे होता है ना कि आप किसी की तरफ झुकें और झुकने के बाद जो है बात को जो है वो सुने, तो उस वक्त भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि कान जो है किसी की तरफ झुका देना, जैसे पूरी तरह उसकी तरफ कान को झुकाकर उसके मुंह की तरफ बात सुनी जा रही है ना। फिर इसी तरह जैसे बर्तन झुकाना, सगैतुल इना, ताकि पूरी तरह जैसे बर्तन झुकाया जाए उसमें से पानी निकालना या कोई चीज निकालना, तो असल में सगा यसगू इसके मानी होते हैं झुका देना। कुरान में झुकाने के लिए 12 लफ्ज आए हैं और ये इसका चौथा दर्जा है सगा यसगू, और इसके मानी है पूरे या ज्यादा झुकाव के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बोले तस्गा इलेही, ताकि झुक जाए मायल हो जाए इलेही इसकी तरफ, यानी क्या चीज इनकी तरफ मायल हो, अफिदातु दिल, फिर वही फुआद जो है ये फुआद जमा है, अफिदातु वाहिद है, इसका रूट है फा हमजा दाल, ताकि दिल जो है इस खुशनुमा धोखे की तरफ मायल हो। भले तस्गा इलेही अफिदातु, तो किसकी तरफ दिल मायल हो, जुखरा फल कौली गुरूरा, के ये जो बातें इस्लाम की मुखालफत में होती हैं और वो जब झूठी सच्ची बनाकर पेश की जाती हैं, शकूक शुभा चालें तदबीरें, और जो दिल है ना उसकी तरफ मायल होते हैं ऐसी चीजों की तरफ, किन के दिल मायल होते हैं, अल्लज़ीना ला यूमिनूना बिल आखिरती, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, तो उनके दिल जो है ज़ुख़रा फल कौली गुरूरा की तरफ मायल होने लगते हैं। क्यों मायल होते हैं, वले यरदहू, और वो उससे राजी हो जाएं, उनका अपना भी दिल चाह रहा होता है, आखिरत पर यकीन कोई नहीं होता और ऐसी बातें उनके दिल को अच्छी लगती हैं, वले यरदहू, ताकि वो राजी हो जाएं, वले यक्तरिफू, और ताकि वो बुराइयों का इर्तकाब करें। वले यक्तरिफू ये खास एक लफ्ज है, इसको आप समझ लीजिए, इसका रूट है कौफ रफा, इसके लफ्जी मानी है जख्म का छिलका उतारना, जख्म का छिलका उतारना। और अब आप देखें कि जब जख्म ठीक होने के करीब होता है तो खुजली बड़ी होती है, उस पर थोड़ा थोड़ा खरेंड सा और छिलका आ रहा होता है, और जब उसका छिलका उतारा जाता है तो जख्म ठीक होने की बजाय खराब होने लगता है। तो ये क्या है, ये से नजायज काम करना, तो एक तरफा जो है ये नजायज तरीकों से कमाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे कुरान में ये लफ्ज अच्छे और बुरे दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है, और जैसे नजायज कमाई करना और बुराइयों का इक्तसाब करना उसके लिए भी ये इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे ये जो है ये गुनाह करना उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इनके दिल जो है ये जुखरा फल कौले गुरूरा की तरफ मायल हो, वले यरदहू, और वो पसंद कर ले इसको, वले यक तारेफू, और ताकि वो गुनाह करते चले जाएं, वो कमाएं, मा हुम मुक्तरिफून, वो कुछ वो कमाएं बुरे काम जो के ये कमाई करते चले जाते हैं। तो ये है जो है वो आज का सबक, और इस सबक में जो है ये पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें क्या पैगाम देते हैं। अब आप देख लीजिए कि वो आयात जो सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 74 से शुरू हुई थी और 113 पर आकर खत्म हुई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत, उनकी शोहरत और उनकी इज्जत, उनकी सरफराजी से बात शुरू हुई, 17 मजीद अंबिया के वाकयात जो मोहसिन थे और जो सवाले थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि किस तरह जो है वो दीन जो है वो गालिब आता है, और मेरे दूसरे पैगंबर जो हैं उनको भी आजमाइशें मुश्किलात जो हैं वो पेश आई, और आपका तरीका क्या है, आपका तरीका ये है कि आप लोगों को हांके पुकारे जो है वो दीन की दावत देते चले जाएं, और अहले मक्का के मुतालबात पर आप घबराएं नहीं, कि कोई मौजजा अगर ऐसा आ जाए कि जिससे इनके दिल झुके और वो दीन की तरफ जो है वो मायल हो जाएं या दीन के लिए वो कायल हो जाएं, तो अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि फरमाइशी मौजजात के मुतालबात से लोगों को मुसलमान बनाया जाए। और अगर आज के सबक पर आप गौर करें तो पूरे सबक में खास तौर पर जो है वो توحید کے دلائل ہیں، ایک اللہ کی بندگی کرنے کے دلائل ہیں، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ آیت نمبر 102 جو ہمارے سبق کا نچوڑ ہے، اور وہ کیا کہ ایک اللہ کی بندگی کی جائے۔ اور زخرف القول غرورا، یہ جو باتیں دھوکے کی ہیں، فریب کی ہیں، شیطان جو ہے وہ دلوں میں ڈالتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور پھر جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب انسانوں میں سے کیسے دلوں میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں؟ مثلا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا، اور نہیں آج کے دور میں جو ہے وہ حلال پر حلال کمائی نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ حرام سے بچا نہیں جا سکتا، اور پھر شراب سے نہیں بچا جا سکتا، اور پھر جو ہے وہ سچ بولنا تو ناممکن ہے، اور پھر یہاں آ کر تو بالکل ہی جو ہے یہ ناممکنات میں سے ہے کہ دین اسلام پر جو ہے وہ چلا جائے۔ تو پیاری بہنوں، آج کا پورا سبق ہمیں ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل جو ہیں یہ ایسی شیطانی باتوں کی طرف جو ہے وہ جھکتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ حالات سے، مسائل سے، مشکلات سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ دوسرا، ہمارے آج کے سبق سے پھر عمل کا اصول کیا نکلے، عمل کے لیے کیا باتیں سامنے آئیں؟ تو پہلی چیز یہ آئی کہ ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک دائی کی حیثیت ہے، مبلغ کی ہے، ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، اچھے طریقے سے ان کے سامنے دعوت جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آج کے سبق میں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اور تیسری بات ہماری سمجھ میں آئی کہ ہم جو ہے وہ پیئر پریشر یا زمانہ یا حالات جو ہے اس سے ہم متاثر نہ ہوں۔ تو نے دیکھا ہے منڈیروں پہ چراغوں کو فقط، میں نے جلتا ہوا ہر دور میں انسان دیکھا۔ تو آج کے اس دور میں جب انسان جل رہا ہے، جب مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے، تو کس بات کی ضرورت ہے؟ میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا، میری اذان سے جوش بلال مت چھینو۔ ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، بس انتظار ہے کب یہ کمال ہونا ہے۔ ہر ایک شخص چلے گا ہماری راہوں پر، محبتوں میں ہمیں وہ مثال ہونا ہے۔ زمانہ جس کے خم و پیچ میں الجھ جائے، ہماری ذات کو ایسا سوال ہونا ہے۔ تو یہ ہے اصل بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔